पूजा मंगल आरती के साथ शुरू होती है और फिर 7 बजे भगवान की श्रृंगार आरती होती है और 12:30 बजे भोग आरती के साथ दर्शन 1 से 4 बजे तक बंद हो जाती है। दर्शन फिर 4 बजे खुलती है और 7 बजे संध्या आरती होती है और 9 बजे शयन आरती के साथ मंदिर दिन के लिए बंद हो जाती है। और हर रविवार को विशेष पब्लिक प्रोग्राम 12 बजे से भगवान की कीर्तन के साथ शुरू होती है और 12:30 बजे भगवान की आरती होती है और 1 बजे से श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम पर आधारित प्रवचन होती है। उसके बाद भगवान के नाम की जाप करते हैं और फिर हमारे संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी सुल्ला प्रभुपाद जी की गुरु पूजा होती है और 2:30 बजे महाप्रसाद के साथ दिन का कार्य समाप्त होती है। आप सब अपने परिवार और मित्रों सहित आइए, फिर से राधा गिरधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया और गौर निताई के दर्शन करके उनके पावन कथा सुनकर और पावन प्रसाद पाकर अपने अपने परिवार तथा मित्रों का कल्याण कीजिए।
कृष्ण शब्द का विशेषण दे रहे हैं, युधि कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन मेरे साथ युद्ध कर रहे थे, जो अर्जुन का और मेरा युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, यहाँ पर कुरुक्षेत्र में ही भीष्म पितामह लेटे हैं बाण शज्जा पर, उसी भूमि में जो लीला हुई है कुछ दिन पहले उसकी याद कर रहे हैं। युधि का थे युद्ध में, कहाँ पे युद्ध में, अर्जुन के साथ जब मेरा युद्ध हो रहा था उस युद्ध में, तुरग रजो विधुंग विश्व, तुरग का थे घोड़े, घोड़ों के खुर से धूल उड़ती थी रथ वेग से चलाने से, और इधर उधर दाएं बाएं कभी आगे धूल उड़ती थी, उसको तुरग रज कहते, घोड़ों के खुर से रज उत्थित होता था, धूली उड़ती थी, तो धूली से विधुम्र विश्व कचलित, और धूली उड़ने से श्री कृष्ण के केश धूम्र हो जाते थे। धूम्र का अर्थ है धूली धूसरित कहते, रथ हाँकते थे लेकिन धूल उड़ने पर आप सब स्वाभाविक समझ सकते हैं कि धूल पड़ेगी, तो भगवान के पीताम्बर पर और माला पर तथा उनके केश पर, केश पर जल्दी पता लगता है कि धूली छाई हुई है क्योंकि केश काला काला है, धूली पड़ने से धूम्र हो गया है, स्वाभाविक ही स्निग्ध और काले केश मटमैले हो गए हैं, धूली धूसरित हो गए। दूसरी केस इधर उधर संचालित हो रहे हैं। चूंकि रथ हाँकने में कृष्ण कभी कभी घोड़ों को बोलते हैं, कभी दाएं दाएं आगे करते हैं। युद्ध में रथ को बचाना पड़ता है और रथी को भी बचाना पड़ता है, तो उस सारथी के हाथ में रहता है कि ऐसे ट्रिक से और कला से रथ का संचालन करे कि रथी की रक्षा हो और रथ भी बचा रहे। किससे बचाना है? विपक्ष में महारथी बाण लेकर के खड़ा है, युद्ध कर रहा है, बाण वर्षा कर रहा है, उसे रथी को बचाना है और घोड़े को, रथ को, सबको बचाना है। उसके लिए भगवान बहुत ही कलात्मक ढंग से रथ संचालन करते थे कि रथ हिलता था, हिलने से भगवान की अलखें इधर उधर हिलती थी। घोड़ों के रज से धूसरित हुई अलखें हिलती थी, बाघ हिलता था। और भगवान श्री कृष्ण इतने व्यग्र हैं युद्ध में अपने सखा को विजय दिलाने के लिए, उनको फुर्सत नहीं है कि अपने केश को संवारें। ये हाथ खाली नहीं है भगवान का, तो केश हिल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। तो उससे भगवान के मुख पर जो पसीने उभरी हुई हैं, वे पसीने अपने आप इधर उधर विकीर्ण होती हैं। पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं है भगवान को, और पसीने की बूंदे श्वेत बिंदु भगवान के मुख कमल पर उभर आए हैं। इससे मुख की बहुत शोभा बढ़ गई है। शोभा दो तरह की, एक तो स्वाभाविक ही भगवान का मुख सुंदर है, सांवले शरीर पर मोती की बिंदु के समान वो तो श्वेत बिंदु सब शोभा दे रहे हैं। और उसको भी तुरग धूली से भूसरी अलके उसको विकीर्ण कर देती है, कल्कि पोछ देती है, और पसीना उभर रहा है। इसके द्वारा यह सिद्ध है कि भगवान अपने भक्त अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं, तो उनके भक्त वात्सल्य को सूचित कर रहा है कि इतना मेहनत कर रहे हैं भगवान। मेहनत करने से, परिश्रम करने से श्वेत बिंदुए उभर आती है, पसीना आ रहा है रथाकने में। तो अर्जुन के प्रति भगवान का जो स्नेह प्रकट हो रहा है, किसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं? अर्जुन के लिए, अर्जुन को विजयी बनाने के लिए। तो इस तरह से श्वेत बिंदु है मुख पर और अलकें अलकों से पोछा जा रहा है, बिखर रहा है। तो इस तरह से भक्त के लिए किए गए परिश्रम से जिनका मुख कमल बहुत सुंदर है लगता है, ऐसे बैठा हुआ निठल्ला आदमी अच्छा नहीं लगता है। कुछ मेहनत करे तो वो अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें भी अपने सखा को विजय दिलाने के लिए कृष्ण मेहनत कर रहे हैं, भगवान परिश्रम कर रहे हैं। और उस परिश्रम कुरुक्षेत्र में रथ हाँकने में उनको समय नहीं है कि वो अपना पसीना पोछे, पीताम्बर से ऐसे पोछ लें। अब अलकों से ही जो पसीना पोछा जा रहा है। दोनों हाथ फंसे हैं। इस तरह भक्त को विजय देने में जो व्यग्र है, तो युधि तुरग रजो विधुम्र विश्व कचलित संवाद अलंकृता से, इस तरह से जिनका मुख कमल अलंकृत है युद्ध में, उन्हीं पार्थ सखा में मेरी निर्दोष प्रीति हो, मेरी निष्काम प्रीति हो, अन्य कामना शून्य रति हो, उन्हीं में मेरा मन हमेशा रमता रहे। कृष्ण आत्मा अस्तु, मेरा मन कृष्ण में हमेशा रमे रहे। कैसे कृष्ण में जो कुरुक्षेत्र में इस तरह अर्जुन का रथ संचालन करने में व्यग्र है और जिनका भक्त प्रेम प्रकट हो रहा है। भगवान ने कहा है कि हम भक्तन के भक्त हमारे, मैं भक्त का हूँ और भक्त मेरे हैं। और उसमें भी सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत तरत निटारे। और उसमें कहते देखो, भक्त के अधीन हूँ, तुम्हारे प्रेम के अधीन हूँ, तभी तो तुम्हारा रथ हाँक रहा है। और साधारण तरह से रथ नहीं हाँकते थे, रात दिन भगवान चिंता में रहते थे कि अर्जुन को विजय दिलाना है, अर्जुन को विजय दिलाना है, इसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। तो इस तरह अर्जुन को विजय दिलाने में जिन्हें अपने परिश्रम का भान भी नहीं है, मतलब श्वेत बिंदु पोछने का जिनको फुर्सत नहीं है, ऐसे पार्थ सखा में अर्जुन अर्जुन सखा में मेरी निष्काम प्रीति हो, निर्दोष भक्ति ये प्रार्थना। अच्छा, इस तरह से ये तो सामान्य पूरा सुबह इसी स्वरूप में उनकी प्रीति है, और इस स्वरूप को, इस शोभा को अर्जुन ने नहीं देखा है, इसको देखा है प्रतिपक्ष से लड़ने वाले भीष्म पितामह ने, क्योंकि सारथी भगवान कृष्ण आगे रहते थे और अर्जुन पीछे खड़े होकर के लड़ते थे, तो भगवान का मुख बहुत कम देखते थे, पर भीष्म पितामह तो सामने से लड़ रहे हैं, तो पूरा आंख भर करके भगवान के इस छवि को देखते हैं। तो वही छवि आज भी अपने मानस पटल पर उभरी है और उसी रूप में प्रीति चाहते हैं, उसी लीला में आवेश चाहते हैं। बार बार कहते पार्थ सखा में, विजय सखा में मेरी प्रीति हो, प्रीति हो, प्रीति हो। अब युद्ध के प्रथम दिन की याद कर रहे हैं, जिस दिन गीता का उपदेश हुआ है उस दिन की याद कर रहे हैं। सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य स्थितवती परसय निकाय रक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। पार्थ सखे मम रति अस्तु, पार्थ सखा में मेरा प्रेम अखंड रहे हमेशा। कैसे पार्थ सखा? सपदि सखी बचो निशम्य, अपने मित्र की अर्जुन की बात सुन करके तुरंत ही अपने रथ को, अपनी सेना और शत्रुओं की सेना के बीच में कर दिए। तो अर्जुन की बात सुनना था, सेना और उभयोर मध्य रथम स्थापय में चित। जब दोनों पक्ष से चुनौती प्रति चुनौती हो गई, भीष्म पितामह ने शंख बजाया था पहले, इसके बाद कौरव वीरों ने अपना अपना शंख बजाया, नगाड़ा या युद्ध के बाजे सब बजाए, जो शांत हुए तो इसके बाद भगवान ने शंख बजाया, उनका जवाब दिया, फिर अर्जुन बजाया, महाराज युधिष्ठिर भीमसेन नकुल सहदेव सभी को शंख बजाया। शंख ध्वनि इतना विकट हुई थी, संजय जी कहते हैं कि जब कौरव बाजे बजाए सारा जुझाऊ बाजे युद्ध के बाजे, तो सर घोषस्तु लो भवन, क्या हुआ, बहुत घनघोर आवाज हुई, लेकिन पांडव वीरों पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई इसको कुछ भी वर्णन नहीं कर, कुछ नहीं हुआ। हाँ, आवाज खूब हुई, लेकिन जब पांडव पक्ष के वीर केवल शंख बजाए, केवल शंख, अन्य बाजा नहीं, तो इस पक्ष से भगवान शंख बजा रहे थे और अर्जुन बजा रहे थे, इनके शंख का नाम भी संजय बता रहे हैं, पांच जन्यम ऋषिकेश देव दत्तम धनंजय, एक एक शंख का नाम। और भीमसेन तो मनुष्य की खोपड़ी बजाए, महाशंख कहते हैं उसको, भीम कर्मा बिल्कुल महाशंख बजाए, महाशंख का अर्थ होता है मनुष्य की खोपड़ी, वही बजाए, इसलिए संजय जी कहते भीम कर्मा बिल्कुल भयानक कर्म करने वाले, अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर महाराज अनंत विजय नाम का शंख बजाए। नकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्पक, एक सुघोष नाम का शंख, एक मणि पुष्पक नाम का शंख, और अन्य वीर भी अपना अपना शंख बजाए, केवल शंख वादन हुआ। और उसके विषय में संजय क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र से ही स घोषो धार्त राष्ट्र नाम हृदयानी वेदार, वह घोष शंख ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों और सैनिकों के हृदय को फाड़ दिया। ये कथा धृतराष्ट्र ही कह रहे हैं, धृतराष्ट्रणाम हृदयानी व्यदार, हृदय को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया, मतलब उनके युद्ध का उत्साह समाप्त हो गया, हृदय फाड़ दिया, उत्साह चला गया, इतना ही नहीं गया, कितने के पैंट शैंट खराब हो गए केवल शंख ध्वनि से, कितने वाहन से गिर गए, बेहोश रहे, चक्कर आ गए, केवल इस पक्ष में भगवान है ना, सैनिक कम है, लेकिन इधर घोष जो हुआ तो धृतराष्ट्र के सैनिकों का दिल दहला दिया, दुर्योधन आदि का, और सब गिर गए, बेहोश हो गए, कुछ अवसर दिया गया उनको ठीक होने के लिए, तो अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धार्तराष्ट्रम कपि ध्वज। जब व्यवस्थित हो गए फिर से, जो गिर गए थे उठ करके, जैसे से घोड़ा पर चढ़े, रथ पर चढ़े, हाथी पर चढ़े, हथियार सब गिर गए थे, उनको ऐसा लगा कि बिजली गिर गई सबके ऊपर, शंख ध्वनि ऐसी हुई थी। तो अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धार्तराष्ट्रम, धृतराष्ट्र के सैनिकों को, दुर्योधन के सैनिकों को, उनके पुत्रों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखे व्यवस्थित हो गए, तब हनुमान जी जिनके ध्वजा पर है वे कपिध्वज श्री अर्जुन प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव। जब चुनौती का उत्तर दिया गया था, शंखवादन दोनों तरह से हो गया, तो शस्त्र संपात होने ही वाला था, अब बाण वर्षा और हथियारों की वर्षा होने ही वाली थी, होने वाली थी। तब तक तो अर्जुन के मन में क्या हुआ, भगवान ने प्रेरणा दिया, धनु उद्यम में वे खड़े हो गए रथ पर और धनुष को ऊंचा करके दोनों साइड में ऐसे दिखाए हैं, मुको धनु उद्यम में, उद्यम का धनुष उठा करके, धनुष चार हाथ लंबा होता है, छह फीट लंबा होता है, तो उसको उन्होंने दिखाया दोनों दल में सिंगल की तरह, रुको रुको ऐसे धनुर्दम में पांडव। जबकि युद्ध चालू होने वाला था, लेकिन अर्जुन एक विश्व विख्यात योद्धा थे, महान व्यक्ति थे, तो उनके बात को लोगों ने माना। यदि विघुल बज चुका था, आह्वान हो चुका था, आओ आओ, ये आवाज भी आई थी और शंख वादन हो गया, लेकिन अर्जुन के रुकने से रुक गए। तो अर्जुन ने अवसरा के बीच में बड़े उत्साह से रोक दिए और ऋषिकेश के मृदय महीपते, हे महीपते, हे धृतराष्ट्र महाराज। तब अर्जुन ने ऋषिकेश से यह कहा, रुक कर युद्ध रुक गए। तो अर्जुन बोले, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मे चित्त। उसी की याद कर रहे भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह के सामने ही इस चर्चा हो रही थी। तो संजय जी कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, हे अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होने वाले, अपनी महिमा से कभी गिरने नहीं वाले, हमारे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। जैसे भगवान चकित हो गए, दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा करना, अपने पक्ष में रह करके लड़ना है ना। सेनयो उभयो मध्य, उभयो सेनयो मध्य, दोनों सेना के बीच में मैं रथम स्थापय, मेरे रथ को खड़ा कीजिए। क्या क्या बात हो गई, क्यों? मान लीजिए भगवान पूछे ना, बीच में क्यों खड़ा करें? यदि भगवान पूछे नहीं, जिम ही अर्जुन कहे तहीं ले जाकर खड़ा कर दिए। लेकिन फिर भी गीता की टीकाओं में एक बार प्रश्न किया गया है, क्यों क्यों खड़ा करें? जावत देता निरीक्षे हम योद्धु कामन अवस्थित। अच्छा, भगवान ने मानो पूछा कितना देर खड़े रखे, जब तक मैं युद्ध की कामना वाले इन सैनिकों को देख नहीं लेता हूं तब तक रथ खड़ा रखे। मैं पर्पस भी सुना दिए, युद्ध करने की इच्छा से जो आए हैं उनको मैं देखना चाहता हूं। कई मया सहयोधव्यम अश्वी गण समुद्ध में, किनके किनके साथ मुझे लड़ना होगा, एस्टिमेट तो करना चाहिए ना, बिना सोचे समझे आदमी को फंस नहीं जाना चाहिए। कौन कौन लोग आए हैं जरा उनका चेहरा देख लें, हम भी तैयारी कर लें, एस्टिमेट कर लें। तो पहले दुर्योधन एस्टिमेट किया था, तो द्रोणाचार्य को जाकर के उकसाया, डर गया था। अब अर्जुन के मन में इच्छा हुई, क्योंकि ऋषिकेश इंद्रियों के जो प्रवर्तक हैं वे प्रेरणा दे रहे थे, उनको तो उपदेश करना था जगत के हित के लिए, अर्जुन को बहाना बना करके, तो वे ऐसी प्रेरणा दी, सैनिक देखने की इच्छा हो गई। कैर मया सहजोधव्य, किन 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 के साथ मेरा युद्ध होगा मैं देखना चाहता हूं इस रण समुद्र में, इसलिए आप युद्ध से मानन अवेक्षे हम, युद्ध करने की इच्छा वालों को मैं देखना चाहता हूं, अवेक्षे अहम, जुत्समानं अवेक्षे अहम्। ये ते समागत जो लोग यहाँ आए हैं और युद्ध की इच्छा से आए हैं, मैं उनको देख लेना चाहता हूँ। धातराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सा, विशेष करके मैं उन लोगों का चेहरा देखना चाहता हूँ जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र का प्रिय करने के लिए यहाँ आए हैं। धृतराष्ट्र से कथा कही जा रही है और कह रहे संजय कि अर्जुन ने कहा कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने के लिए, प्रिय करने के लिए जो लोग यहाँ आए हुए हैं, जरा मैं उनका चेहरा देखूं। बिल्कुल जोश में बोले, लड़ने के उत्साह से बोले, भगवान बस सुने उनके बात, तथास्तु कहकर के रथ बोले। दूर नहीं ले जाना था, जैसे सेना तो बहुत फाका स्थान में खड़ी थी, दूर दूर तो बीच में ले जाकर खड़ा था। एवं उक्तो हृषिकेशो गुडा केशेन भारत सेनयोर्भयोर् मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे उत्तम रथ था सब तरह से, जिसमें उजले उजले चार घोड़े जुते हुए थे, उस रथ को ले जाकर भगवान ने खड़ा और खड़ा करके इतना ही नहीं कहा, अर्जुन का अभिप्राय सुने थे तो वे कहते हैं स्थापित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वे शांत महिक्षिता, जहां रथ को कहां खड़ा किए, भीष्म द्रोण के बिल्कुल सामने बीच में, उस पक्ष में वे सामने थे। सर्वे शांत महिक्षिता उवाच पार्थ पश्यतां संवेतां कुरुनीति। और इसके बाद अर्जुन के हृदय में मोह पैदा करने के लिए भगवान का ट्रिक देखो, हृदय में तो है ही, वाणी भी ऐसा बोले कि हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र, कुलवंशियों को, महाराज कुरु के वंश में जन्म लेने वाले इन लोगों को देखो। तो अर्जुन स्वयं ही कुलवंशी थे। पश्चिम कुरु नीति, इन कुरुओं को देखो, और भी अंगुली से दिखा है, अपने अंगुली से दिखा कह रहे ये तुम्हारे दादा भीष्म है ना, और तुम्हारे आचार्य द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य जी तुम्हारे मामा शैल हैं, ये महारथी कर्ण है, भगवान इस तरह से दिखा रहे थे, जिससे अर्जुन के मन में तुरंत मोह उत्पन्न हो जाए, संबंध जान कर ये है ऐसे है। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पित्री नथ पिता वहां, अर्जुन की दृष्टि गई तो अर्जुन देखते हैं दोनों सेना, उधर भी देखते हैं इधर भी देखते हैं। पित्री का अर्थ होता है लगभग पिता के भाई, छोटे या बड़े, देखे कई ऐसे संबंध में थे, और ससुर आदि भी ये सब पिता ही हैं, लेकिन इसके लिए अलग शब्द ही दे रहे हैं। पितृनाथ पिता महान, आचार्यजान मातुलान भ्रातृ, आचार्यों को देखे दोनों पक्ष में, और मामा लोगों को देखे, भाइयों को, दुर्योधन आदि भाई थे, भाइयों को, पुत्रान पौत्रान सखी तथा पुत्रों को देखे, पौत्रों को देखे, सखाओं को जिनके साथ एक साथ खेले थे खाए थे उनको देखे, ससुराल सुहृदश्चय सेनयोर्भयोर् बार बार देख रहे हैं, इस सेना में देख रहे हैं, अपनी सेना में, तो उधर भी सब संबंधी, उधर देख रहे हैं तो उधर भी सब संबंधी, सारे सुहृद सारे ससुर सियाल जो भी उनको देखते ही अर्जुन अब परम कृपा से आहत हो गए, मोह छा गए। अरे भगवान से कहने लगे, बड़े उत्साह से दिखाने के लिए कहे थे कि रथ ले चलिए, और देख करके क्या दशा हुई, दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण जीतम समुपस्थितम सीदंती मंगाचारी मुखम च परिशिष्ट कृष्ण सेनाओं में अपने स्वजनों को देख करके मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा है, वास्तव में दर्द उत्पन्न हो गया है सब जगह, छाती में, गला में, हाथ में, पैर में, सिदंती मम गात्राणि, हमारे शरीर में पीड़ा हो रही है। सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति, पर कृष्ण मेरा मुख सूख रहा है, बोलने की भी शक्ति नहीं है, मेरा मुख सूख रहा है। गांडीवम संसते संसते हस्त त्वचै व परिग्रहित, गंडीव धनुष उठाने की शक्ति अब नहीं रह गई थी, ये सरक रहा है, ये गिर रहा है, मैं उसको उठा नहीं सकता, हमारे हाथ में कोई शक्ति नहीं रही। और त्वचै व परिग्रहित, और ऐसा लग रहा है मेरे सारा शरीर जल रहा है, चमड़ा जल रहा है। नच सपने में अवस्था तुम भ्रमती वचने माना, मैं यहाँ रथ पर खड़ा नहीं रह सकता हूँ, मेरा मन चक्कर खा रहा है, मैं लगता है कि गिर जाऊंगा। इतना उत्साह से एस्टिमेट करने गए सेना का, और देखने के बाद भगवान हिसी के हृदय में है, वो ऐसा मोह पैदा कर दिए। नच सपने में अवस्था तुम, मैं अवस्थान करने के योग्य नहीं हूँ, खड़ा मैं नहीं रह सकता, शरीर भी खड़ा नहीं रहता, मन भी चक्कर खा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं नर्वस होता जा रहा हूँ। निमित्तानि चपस्यानि विपरीतानि केशव, और जो निमित्त में शकुन देख रहा हूँ, बहुत सब शकुन देख रहा हूँ शरीर में, आकाश में और धरती में, सब जगह मुझे अशुभ दिखाई दे रहा है, हमारे सब बाएं अंग फड़क रहे हैं, मैं शुभ नहीं देख रहा हूँ। नच श्रेय पश्यामि हत्वा स्वजन महा, मैं विचार करके देख रहा हूँ भाई अब क्यों यह स्थिति तुम्हारी हो गई, मान लीजिए भगवान पूछ दे कि यह स्थिति क्यों हो गई, मैं इस युद्ध में अपना कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ, कल्याण नहीं देख रहा हूँ, इसमें हमारा कोई हित नहीं होगा, इस युद्ध में अपने बंधुओं को मार करके मैं कोई भी भलाई नहीं देख रहा हूँ। स्वजन आहो आहो मैंने युद्ध में मैं अपने स्वजनों को मार करके कोई भलाई नहीं देता, तो भगवान ने मानो कह दिया क्या क्यों नहीं मंगल है, क्यों नहीं भलाई है, राज्य मिलेगा, सुख मिलेगा, भोग मिलेगा। न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें सुख भोग नहीं चाहिए, किम भोगे न गोविंद राज्य में गोविंद भोगे जीवते न, क्या इसे सुख मिलेगा, हमारा क्या प्रयोजन है, राज्य हम लेकर क्या करेंगे और भोग भोग कर क्या करेंगे, अरे हम जी कर क्या करेंगे, हमको जीने की इच्छा नहीं है, मैं शत्रुओं मैं अपने स्वजनों को मार करके जीना नहीं चाहता। और बड़े ही दर्दनाक स्वर में अर्जुन कहते हैं जैसा अमर्थ है कांचितन राज्य भोगा सुखान, कृष्ण इस संसार में व्यक्ति राज्य कमाता है, धन जुटाता है, भोग जुटाता है, किसके लिए, अपने स्वजनों के लिए ना, तो जिनके लिए धन कमाया जाता है, जिनके लिए राज्य लिया जाता है, भोग भोगा जाता है, वही सब यहाँ मरने के लिए तैयार, जैसा मर्थ है कांचितम राज्य भोगा सुखानी चौ तो इमें वस्तुता युद्ध प्राणांश तक धनानी चाहिए, जिनके लिए धन कमाया जाता है, परिश्रम किया जाता है, सब जुटाया जाता है, वही सब यहाँ मरने के लिए तैयार है, ये प्राण त्याग चुके हैं, मतलब प्राण त्याग चुके हैं इसका मतलब है कि अब तो युद्ध में मरने के लिए तैयार है, धन तो छोड़ ही दिए हैं, धन तो छूट ही गया, मरने के बाद तो सब छूट ही जाता है, प्राण भी चला जाता है, तो जिनके लिए, जिनको सुखी करने के लिए, जिनको समृद्ध रखने के लिए सब धन कमाया जाता है, राज कमाया जाता है, वही सब मरने के लिए तैयार है, मर जाएंगे तो फिर ये धन क्या होगा और जी करके ही क्या होगा।